السلام علیکم. 12 نومبر کو حیدرآباد کی سرزمین پر حضور اشرف الخلقاء کا خطاب.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا اور شریعت کی پاسداری
ایسے عظیم کارنامے ہیں اور اس مرد خدا کی کتاب زندگی کے ایسے عنوانات ہیں کہ سارے علماء اہل سنت مل کر شب و روز اس پر اپنے جذبات اور اپنے علمی انداز کو صرف کریں تو میرا خیال ہے کہ کتاب زندگی امام احمد رضا کا عنوان کشنا ہی رہے گا، اسے مکمل بیان نہیں کر سکیں گے۔ ایسی اپنی شخصیت کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت کے لیے پیش آئے ہیں، حاضر آئے ہیں، یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، امام احمد رضا کی شاعری ہی نہیں، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت، مولا کائنات کی عظمتوں کا سکہ جو ان کے دل میں رب نے بٹھا رکھا تھا، اس کا اظہار اس انوکھے انداز سے کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے شاعروں کو ہم نے مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھا بھی، سنا بھی اور پڑھا بھی، لیکن ایک انوکھا نیا انداز امام احمد رضا پیش کر رہے تھے۔ بڑے سادے سیمپل ورڈ میں فرماتے ہیں، بحر تسلیم میں رضا، بحر تسلیم میں علی، میدانوں میں ایک مصرع ہو گیا، چھوٹی سی بحر ہے اور مضمون اتنا بڑا ہے کہ جیسے سمندر کھاتے پا رہا ہے۔ بحر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے، صحابہ کرام کے جنگی کارناموں کا سروے کیجیے تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسلام کے لیے جہاد میں شرکت کی ہے، شہید ہوئے، اپنی گردن کٹائی، تلوار نے کسی کے بازو کاٹے، کسی کے سر پر زخم آئے، لیکن میں نے اپنے چھوٹے سے علم کی روشنی میں جب تاریخ کا جائزہ لیا تو مولا کائنات کی وہ پرسنالٹی ہے، وہ شخصیت ہے کہ میدان جنگ میں اترے ہیں لیکن دشمن کی تلوار کا ایک زخم بھی ان کے بدن پر کبھی نہیں آیا۔ اب کس کی طرف کسی شاعر کا ذہن نہیں گیا
جی،
اس تاریخی حقیقت کو اجاگر کرنے کی کسی کے اندر توجہ، اجاگر کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے، فیضان ربانی ہے، اور یہ عنایت غوث سمرانی ہے۔ امام احمد رضا کی توجہ اس طرف ہوئی کہ آگے ایسا کیوں، حضرت علی تلوار کے زخم سے محفوظ رہے، تیر چبھے، نیزے کا زخم لگا، پتھر کے زرد سے آپ کا جسم زخمی ہوا، لیکن تلوار سے تو نہیں،
کیا بات،
یہ ایک سوال ہے
جی جی۔
امام احمد رضا کی عقیدت جھومتی اور فرماتے ہیں، دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کو ارادہ کر کے آیا کہ علی کو زخمی کروں، دشمن نیت کر کے آیا سر کاٹ دوں، علی کے خود اور زرہ کو پارا پارا کر دوں، زہر آلود تلوار لے کر آیا، دشمن علی کے سامنے کھڑا ہے، मौलाए कायनात कोई पहलवान नहीं थे, दुबले पतले थे, हाथ पांव पतले पतले, और आपकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, आप पस्ता खत थे, लेकिन रब ने वो हैबत दी, वो वकार अता फरमाया कि एक एक पहलवान जो सैकड़ों सपा सिपाही पर तरह भारी था, मौलाए कायनात को देखकर उसका पिता पानी बन जाता। हजरत अली के सामने तलवार लेकर आता, तलवार ऊंची करता और वार करना चाहता, लेकिन तलवार ने कभी अली के जिस्म पाक को जख्मी नहीं किया। आला हजरत फरमाते हैं इसलिए बहरे तस्लीम अली
मैदानों
में मौलाए कायनात को सलामी के लिए सर झुके रहते हैं तलवारों। तलवार उठती थी झुकती थी, दुश्मन कहता था यह तलवार का, और तलवार को अगर जबान मिलती तो कह पड़ी वो तलवार बोलती है नाबकार, मैं अली को जख्मी करने उनका सर और बाजू काटने के लिए नहीं आई हूँ, आई तेरे साथ और सलाम मौलाए कायनात को करने। अली की सलामी के लिए वो तलवारें आती थी, सर काटने के लिए नहीं आती, और जो किसी को झुककर सलाम करे क्या वो उसको नुकसान पहुंचाएगा? ए दुश्मन तेरे इरादे यूं ही नाकाम रहेंगे और मेरे अली का वजूद तलवारों की सलामी देता रहेगा। हजरत ने इस हकीकत को कितने हकीकत मंदाना अल्फाज में बयान किए हैं, बहरे तस्लीम अली मैदानों में अली की सलामी के लिए मैदानों में सर झुके रहते हैं तलवार। दुश्मन ने कहा का, तलवार ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अली ये मुर्तदा, ये सलाम कर रही है और तेरे इरादे को नाकाम कर रही है तलवार, घर की तलवार तेरे है और अली की सलामी के लिए सर झुक रहे हैं, ये मेरे मौलाए का है। तस्वीर में अली मैदानों में अहले बैत की सना मेरा इमाम की शान से करता है। अरे मेरे दोस्तों, जब इमाम अहमद रजा का ये मकाम है तो हम गुलामाने लगा अहले बैत के कैसे जानसार होंगे? हम कभी अहले बैत की मुखालफत नहीं करेंगे, करेंगे अल्लाह ताला उस तसव्वुर से बचाएंगे, वो तसव्वुर आए उससे पहले हमारी मौत आ जाए। अरे अहले बैत के तलबों के जर्रे हमारी निगाह का
सजदा।
इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं क्या बात कर रहा उस कम्युनिस्ता ने क्या की, ये क्या जो है चौंका देने वाला है, ये लफ्ज ताज्जुब के लिए है। फरमाते क्या बात रहता जब आप किसी के कमाल और जमाल का हैरतनाक मुजाहिरा करते हैं, क्या बात उसके हुस्न की है ना, ये क्या ताज्जुब के लिए, हैरत के लिए। आला हजरत और कहीं हैरत नहीं करते, पंचतन की बारगाह में हैरत करा, वो तो बड़े बड़े मालदार की कसीदा पानी के लिए तैयार नहीं। नानपारा के नवाब साहब बड़े कद्रोफर के आदमी थे और जो उनकी तारीफ करता था मुंह माफी मुराद पाता, दामने मुराद भर जाता था, खूब इनामों एकराम हासिल होता था। एक शायर साहब आए, ऐसे ही टूटी फूटी शायरी करते थे, लेकिन नवाब के दरबार में उनको रंग मारने का शौक हो गया, मैं भी अपनी शायरी का रंग जमाऊं, लेकिन सोचने लगे वहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा नवाब के दरबार में आते हैं, मैं टूटी फूटी लंगड़ी शायरी लेकर के जाऊंगा तो मेरा क्या अंजाम होगा। इमाम अहमद रजा की बारगाह में वो शायर साहब हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर नवाब नाम कारा के तारीख में एक मनकबत और कसीदा लिख दीजिए। आला हजरत ने सुना, इनकार नहीं फरमाया, कलम उठाया और लिखने लगे, वो कमाल उसमें हुजूर है, गुमान में उस जहां नहीं, ये भी धूल खार से दूर है, ये भी शम्मा है के धुआं नहीं। नवाब साहब का नाम तक नहीं लिया, पूरी नाक की बदल लिख गए और आखिर में उन साहब को जवाब देते हैं, फरमाते हैं, कल उम्मत है अहल दोवल रजा, बड़े इस बला मेरी बला। शहनाइश करने वाले सुन, मैं किसी दौलतमंद की तारीफ करूं मदह करूं, ये मेरा मिजाज नहीं है, मेरी बला इस बला में पड़े। क्या मैं बला दगा हूँ कि मैं किसी मालदार और नवाब की तारीफ करूं? करूं मदह अहले दोवल रजा, पड़े जिस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं तो मुस्तफा का सल्लल्लाहु वसल्लम की बारगाह का एक मामूली गदा और भिखारी हूँ, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार नाम ही, मेरा मजहब रोटी का टुकड़ा मांगना नहीं है, किसी की तारीफ करके मैं चंद सिक्के हासिल कर लूं, ये मेरा मिजाज नहीं है। करूं मदह अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम पर, मेरा दीन पारे नाम ही, उस कस्बे का नाम आज भी नाम पारा है। नाम कहते हैं रोटी को, पारा कहते हैं टुकड़े को, हम उसको किस अंदाज से बयान कर दिया, मैं नाम पारे का गदा नहीं हूँ, मैं मदीने का गदा हूँ, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। और फरमाते हैं, तेरे टुकड़ों के पले
पैर की ठोकर पे
ठोकर के नदान, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों के पले, हाँ तेरे टुकड़ों के पले गैर की ठोकर पे नदान, अरे झिड़किया खाए कहा छोड़ के सब का तेरा, या रसूल अल्लाह हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बारगाह का सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा मन मकसदा से ज्यादा देखती, तेरे टुकड़ों के पले घर की ठोकर के मैदान, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा, और अपनी कौम को आवाज देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, करीम ऐसा मिला जिसके
खुले हैं हाथ,
खुले हैं हाथ और भरे खजाने, अल्लाह ने ऐसा करीम और सखी अता फरमाया है रसूल तुमको, और तुम दुनिया की चौखटों पर मारे मारे फिरते हो, अरे करीम ऐसा मिला के
बादशाह की जालिमाना आंखों में आंखें डालकर
और हिम्मत और इस्तेकलाल का मुजाहरा करते हुए ये साफ करना है सब हम उस रब को मानते हैं जिसने आप जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने जमीन को पैदा किया, सारी इंसान को जिसने पैदा किया। क्या करना है करके कहा, देखो मैं एक दिन का तुम्हें चांस देता हूँ, मोहलत देता हूँ, सोच लो तुम्हारी जिंदगी आरों से चीर करके खत्म कर दी जाएगी, देर में तेल में खौला खौला कर जला दिया जाएगा, आपकी हड्डी में तुझे बेदर्दी के साथ फेंक दिया जाएगा। इन नौजवानों ने ईमान की हिफाजत करने के लिए बादशाह की धमकी से मुतासिर नहीं हुए, घर आए थोड़ा सा सामान वगैरह लेकर कहा अपना शहर छोड़ दो, ईमान नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, भाई बंद को छोड़ देंगे, अपनी जायदाद पराफर्जी छोड़ देंगे, लेकिन ईमान नहीं छोड़ेंगे। चलो इन जालिमों के शहर से निकल जाओ, चलते चलते रात की तारीकी में चले, अपने आप को बचाते छिपाते जंगल से गुजर रहे थे, जंगल के किनारे एक पहाड़, उसके अंदर गुफा और बाढ़ दिखाई दिया। ये सातों आठों नौजवान अपने ईमान को बचाने के लिए उस गुफे में बेखौफो कतर बतर घुस गए। दरिंदा है के परिंद क्या है, भूत है, शैतान है, कुछ नहीं, ईमान का नशा था चलेगा। अल्लाह ने रास्ता आसान कर दिया, जहाँ गुफा खत्म हुआ वहाँ एक छोटा सा मैदान था, इन्होंने सांस कितनी नाम का सांस लिया और कहा थके माते हैं चलो थोड़ी देर सो जाए। सुबह का सवेरा हो रहा था, ये नौजवान उस मैदान में सोए, नींद आए, सोते रहे सोते रहे, रब ने उन्हें नहीं जगाया, मेरे लिए ये सोए हैं, इनकी मीठी नींद है सोने को। सूरज को हुक्म दिया है, सूरज को निकल रहा है, कुरान पढ़ रहा हूँ, ये इधर उधर का वाकया नहीं, सूरज तहत उठाकर पढ़ लेना। सूरज को हुक्म दिया, देख तेरी गर्म गर्म किरणें, इन मीठी नींद सोने वालों को बेदार न, ऐ सूरज छुप गया। तो रोजाना सूरज आज भी दाएं बाएं झुकता है कुरान उठाकर देखो, लेकिन सूरज अपनी धूप से इन सोने वालों को डिस्टर्ब नहीं करता। जो ईमान को बचाते हैं सूरज भी उसकी खिदमत
करते हैं।
हर साल मौसम में बारिश होती है, लेकिन रब ने बादलों को हुक्म दिया ये मेरे प्यारे सो रहे हैं, बारिश की वजह से इनको डिस्टर्ब मत करना। हर तरफ बारिश होती है और जहाँ तक सोए हैं एक कचरा भी वहाँ नहीं, घास मैदान में उगती है लेकिन यहाँ वो सोए हैं घास का एक पौधा भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। आधी चलती है लेकिन जर्द गुबार उनके चेहरे पर नहीं आ रहा है। 300 साल तक सोते दो दिन तीन दिन नहीं, और जब सोकर वो उठे हैं तो सूरज डूब रहा है। अपने साथियों को जगाया, उठो शाम हो गई है, सुबह सोए थे शाम हो गई है, सब उठ कर बैठे देखा शाम हो गई है, बहुत देर से सोई थे भूख भी लग गई। अपने एक साथी से कहा शहर जाओ और कुछ खाना लेकर आओ ताकि हम लोग खाएं। एक ने पूछा यार हम कितनी देर यहाँ सो रहे थे, तो दूसरे ने कहा ज्यादा से ज्यादा दिन भर हम यहाँ सोए, कितने साल गुजरे
300 साल।
वहाँ तो जंगल हो जाना चाहिए लेकिन रब ने जमीन को भी ईमान बचाने वालों का हाजिम और महाजिब बना दिया था, सूरज भी खिदमत कर रहा था, हवाएं भी उनको गोलियां दे रही थी, कोई परेशानी नहीं। 300 साल इतनी लंबी थी, ये तो रब की इनायत है, वो जो चाहे जिस तरह चाहे अपनी कुदरत का इजहार करे। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, और खाने के लिए गेट से वो 300 साल पहले के सिक्के निकाले और उसको दिया सिक्के सुक्के जाना और किसी होटल से खाना साफ सुथरा लेकर आना और ये मत बताना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वरना बादशाह हमारी तलाश में सिपाहियों को भेज चुका होगा, पकड़े जाएंगे, गर्दन मारी जाएगी, इसलिए रास किसी को मत बताना। उसने पैसा लिया, साथी ने बाहर से निकला और बाजार में गया, खाना खरीदा, होटल वाले ने पैसा मांगा, इसने जेब से सिक्का निकाला, उस जमाने में ये 2000 का रूप पैसा नहीं था, 1000 वाला नहीं था कि बंद हो गया, 500 वाला नहीं था कि बंद हो गया, सिक्के सोने चांदी के होते थे, जैसे ही निकाल करके इसने होटल वाले के हाथ में दिया तो वो सिक्का भीगता रह गया। बोले कहां से लाया ये सिक्का, ये सिक्का तो बम। कहा साहब ये इसी हुकूमत का, कहा नहीं 300 साल पहले जो हुकूमत थी उसका ये सिक्का है। ये बेचारा परेशान, कहा इसको पकड़ लो, कहीं से खजाना इसको मिला है वहां से लेके आया, सबने हर तरफ से पकड़ लिया। कहा चल बता कहां से लाया है, उनके साथ साथ ये चला और बार में पहुंचा, लोग समझे नहीं ये खजाना मिला है इसको। जब बार में वो चला गया, लोग जाना चाहते थे, कुरान फरमाता इतनी है कि कोई जा ही नहीं सकता, ये भी रब ने पहला दिखा के रखा। वो चला गया और जाने के बाद उन लोगों ने खाना खाया। अब ये बाहर रहने वाले बोलते ये कौन सा आदमी था, कहाँ गया, अंदर जाते हैं तो ऐसी हैबत से हमारा हाथ पे रो रहा है, कोई जा ना सका। उस जमाने के जो लोग थे वो मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने कहा यहाँ एक मस्जिद बना दो, वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। एक तवील वाकया है, मुझे वो पूरा वाकया सुनाना नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7-8 आदमियों ने कुफरो शिर्क के जालिम बादशाह से अपने ईमान को बचाने के लिए भाग करके अपने शहर को छोड़कर हिजरत करके खारे हेरा में आकर के छुप गए थे। उनका महान कितना ऊंचा अल्लाह अकबर रबीशा करवाता है सूरे तहफ में अब हसीबुकाना असहाबल तहत वर्गीन ये गार वाले कहत कहते हैं गार को और रकीम कहते हैं जंगल के किनारे को, वो पहाड़ जंगल के किनारे था उसमें गार था, इसलिए इन लोगों को असहाबे कहत और रकीम कहा गया है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें मालूम है कि गार वाले कौन है, इनका मकाम क्या है, सामूहिक आयातना अजबा। अल्लाह ताला फरमाता है ये हमारी हैरत अंगेज निशानियों में से एक निशानी है, जो अपने ईमान को बचाता है उसको अल्लाह अपनी निशानी और अपनी आयत बताता है। अब किस मकाम पर आकर इमाम अहमद रजा की शख्सियत को हारे, इमाम अहमद रजा ने अपना ईमान सिर्फ नहीं बचाया, अपने घर वालों का ईमान नहीं बचाया, दुनिया के करोड़ों इंसानों का ईमान बचाया।
बेशक
कहीं भागे नहीं, मर्दे मुजाहिद बनकर मैदान में कलम की तलवार लेकर के खड़े रहे और दूसरों से कहा हे ऐ लोगों सुनो, दिल के नशा है हम करे तो हार पर तबाह, आधा से कह दो गैर मना में नशर करें। ये मर्द मुजाहिद भाग कर बार में नहीं छुपा, अपने ईमान की हिफाजत के लिए डरा नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर उसने दुनिया को साफ करवा दिया कि इमाम अहमद रजा का तलवार की तलवार वो है कि इसके नीचे जो आएगा वो अपनी खैरियत से जिंदगी बचा कर नहीं जाएगा, फिर से रजा है खजरे खूंखार कर तबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अब इस मकाम पर आकर एक इतनी बात मैंने अर्ज की है, कि जब असहाबे कहब अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है, जो सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए गाल में छुप जाए। अहमद रजा के बारे में आप क्या बोलो, जिन्होंने सिर्फ अपना ईमान नहीं बचाया, दुनिया के करोड़ों इंसान के ईमान की हिफाजत की। मेरे शरीर नवाब आए, लाखों को ईमान दिया।
जी बेशक।
अहमद रजा आए, खाजा की समानत की हिफाजत की।
बेशक।
उन्होंने ईमान दिया, इमाम अहमद रजा ने उस दौलत ईमान की हिफाजत की है। मेरे खाजा भी आज तुम हिल आजादिल्ला है, और इमाम अहमद रजा उस अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। ये भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है।
बेशक।
दूसरे असहाबे कहफ जो हुजूर की उम्मत में नहीं थे, दूसरे नबी की उम्मत में थे, अपना ईमान बचाते हैं तो अल्लाह की निशानी बन जाते हैं, और ये उम्मत मोहम्मदिया के ईमान की हिफाजत करवा रहे हैं। इनका मकाम बहुत बुलंद है।
बेशक।
ऐ लोगो, उनसे दुश्मन मत करो, उनके नाम को सीने से लगाओ। यही वो पर्सनालिटी है जो तुम्हें दीने मुस्तफा पर चलने का शऊर देगी। अल्लाह ताला इनकी सब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। आपको सबक देते गए हैं कि तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख नहीं कर सके। अल्लाह वालों के नक्श कदम पर चलो, कभी बहक नहीं सके। जो अल्लाह वालों का रास्ता छोड़कर चला, वो दूसरी जमातों में शामिल हो गया। एक ऐसा फार्मूला इमाम अहमद रजा ने दिया है कि जो अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलता रहेगा, कभी गुमराहियत उसके साथ आ ही नहीं सकती। इसलिए कि शैतान ऐसे को शिकार करता है जिसके साथ कोई रहनुमा और गाइड और साथी नहीं होता है। जब आप अल्लाह वालों के साथ मिलकर चलोगे तो शैतान दूर भागेगा। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ हो, शहर में हाहाकार मची हो, कोई घर से अगर निकलता है तो गोली मार दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन है लोगों, ऐसे वक्त में एक दुबला पतला आदमी कहीं जाना चाहता है, उसके हाँ किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है, घर से नहीं निकल सकता है, लेकिन पुलिस वाले से दोस्ती थी, पुलिस वाला बाइक से जा रहा था, उसने खिड़की से हाथ दे करके उसे रोका, कहा क्यों भाई, कहा मुझे स्टेशन पहुंचा दे, सिकंदराबाद जाना चाहता हूँ, वहाँ से मैं महबूब नगर की दारू पकड़ कर नानी का इंतकाल हुआ जाना चाहता हूँ, कर्फ्यू में निकलूंगा तो मारा जाऊंगा। पुलिस वाले ने अपने साथ उसको बिठा लिया, सिकंदराबाद स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन कोई पुलिस वाला उसको पकड़ नहीं रहा। एक आम आदमी किसके साथ जा रहा है, गर्दी वालों के साथ जा रहा, यूनिफॉर्म वाले के साथ जा रहा है, जिसने हुकूमत की मुलाजमत कर ली है उसके साथ जा रहा है, तो पुलिस कमिश्नर भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये गांव अपने आदमी के साथ जा रहा है, कोई गलत आदमी नहीं होगा, वो बचा हुआ होगा। बिना तमसीर ये कौशो खाजा वलायत और उपनीजत की वर्दी पहन कर चल रहे हैं, इनका हाथ पकड़ के चलो या नहावे, ये गुमराह शैतान तुम्हें अपने शक्ल में नहीं ले सकता, और वहां पहुंचोगे तो अजाबे इलाही तुम्हें
छोड़।
इसलिए तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं, आओ मुस्तफा के दामन में जाओ, वो खाजा के दामन में छुप जाओ। फरमाते हैं ढूंढाई करें
सदरे
कयामत के सिपाही, ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में
छुपा।
ये इमाम अहमद रजा का मसलक है, उन्होंने होशो खाजा के दामन में आपको छूटने का ऐलान किया है। रब कायनात हम सबको औलिया इकराम की सच्ची अकीदत अता फरमाए, और किसी रास्ते पर चलने मरने और जिंदगी गुजारने का दूर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, खड़े होकर के
किताब खड़े
नहीं।